العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میری مدنی منی جس کا نام فاطمہ اتاریہ ہے، اس کی امی نے کم و بیش 2 سال کی عمر میں اسے روئی سے یعنی کاٹن جو ہوتی ہے نا اس سے ڈرایا تھا، اور جب بات منوانی ہوتی تو اس کے سامنے روئی لے کر کھڑی ہو جاتی. اب وہ باتوں میں پتہ نہیں کیا اس کو ایسا کانسیپٹ دیا کہ روئی کیا ہے، تو جب بھی کھڑا گاؤ ورنہ روئی اٹھائی، دوائی پی لو اٹھتی ہو روئی اٹھائی. تو اس طرح کا ایک انداز 2 سال کی عمر سے اس بچی کے ساتھ کیا گیا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ کوشش کے باوجود اس مدنی منی کے دل میں ابھی تک روئی کا ڈر نہیں گیا. اسلام میں کہتے ہیں میری بچی کی عمر 6 سال ہو گئی ہے مگر وہ روئی سے اب بھی ڈرتی ہے، اور ایک مرتبہ اس مدنی منی کو چوٹ لگی جس کی وجہ سے پٹی کرانی پڑی. اب پٹی میں کیا لگاتے ڈاکٹر؟ روئی لگاتے. اس نے روئی کو دیکھ کر جو اسپتال میں ادھم مچایا، اتنا تو وہ چوٹ لگنے میں نہیں مچایا تھا جتنا اس روئی کو دیکھ کر ادھم مچایا، اور کہا کہ ہم ہی جانتے ہیں کہ کتنی مشکل سے ہم نے اس کی وہ پٹی وغیرہ کرائی. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو بچوں کی تربیت کا جو معاملہ ہے نا، یہ ہے بڑا اہم. یعنی بچوں کی تربیت کرنے کا بھی ایک اپنا فن ہے اور اس کی اہمیت بھی ہے. ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشادات ہمیں عطا فرمائے، قرآن پاک میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے جو احکامات حاصل ہوئے، یہ بڑا اہم ہے. کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں نا، یہ کہا جاتا ہے کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، ان پہ جو لکھا جائے وہ پتھر پر لکیر کا کام دیتا ہے. یعنی ابتدا میں جو بات ان کے دل و دماغ میں بیٹھا دی جائے وہ مضبوط اور مستحکم ہو جاتی ہے. اور کئی بزرگوں کے ایسے واقعات ہیں کہ بچپن ہی سے ان کے جو بڑے تھے، ان بڑوں نے ان کی جو تربیت کی وہ ایسی عظیم تربیت کی کہ وہ بچپن ہی سے متقی پرہیزگار عبادت گزار بن گئے. और इसीलिए वालिदैन को चाहिए कि बचपन ही से औलाद की तरबियत पर तवज्जो दें। मीरा ने सुन्नत दामद बरकात मना लिया कि मदनी मुजाकरे में इसकी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। निजाम खुद फरमाते कि मेरे भाईजान कहा करते थे कि एक सियासी कोई लीडर था, वो तांगे में नहीं बैठता था। जब उससे पूछा गया कि तुम तांगे में क्यों नहीं बैठते, तो कहा कि तांगे वाले जो होते हैं ना, इनकी जबान बड़ी रफ होती है, तो मैं इसलिए नहीं बैठता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको सुन सुनकर मैं भी उन बातों को या उन अल्फाजों को मेरी जबान पर आ जाए। जैसे बाज वालिदैन होते हैं कि इस मामले में एहतियात करते, वो अपने बच्चों को ऐसों के दरमियान नहीं बैठने देते जो गालम गलोच करते, ऐसों के साथ नहीं बैठते थे जो मतलब किसी किस्म की ऐसी मनफी माइनस नेगेटिव जो आदत उमूमन माशरे में पाई जाती हो उसमें मुबतला होते हो। लेकिन इसकी वो बात यही समझ में आती है फी जमाना देखा जाए कि दुनियावी लिहाज से मेरे बच्चे के मुंह से जब गाली निकली, अगरचे शरण भी दुरुस्त नहीं है, लेकिन वो इसलिए कि आम तौर पे मायूस समझी जाती है, इसलिए मैं अच्छा नहीं लगता है कि मेरा बच्चा जो है ना वो गाली कहे। लेकिन बच्चा मतलब कई और बातें जो उसको एज ए मुसलमान होने की हैसियत से नहीं बोलनी चाहिए वो हम बुलवाते हैं। डांस पार्टियां हमारे घरों में होती हैं, हालांकि एक मुसलमान का बच्चा जो है वो म्यूजिक पर अपनी टांगे थरथराए डांस करे, नहीं, ये शरीयत उसको इजाजत नहीं देगी। बहरहाल बाज लोग बच्चों को समझाने में देर कर देते हैं, यार अभी तो छोटा है ना, अभी छोटा है, अभी इसकी उम्र क्या है, अभी इसको क्या समझाएंगे, जब बड़ा होगा तो समझ जाएगा। मगर याद रखिए कि बाद औकात बहुत देर हो जाती है, बहुत देर हो जाती है, और समय के आवे का आवा हमारा बिगड़ जाता है, हम उसका नोटिस नहीं लेते। अमीर अल सुन्नत ने अपने बयान में फरमाया कि एक डाकू को पुलिस वालों ने पकड़ा, कई केसेस थे उसके ऊपर, कत्ल का भी केस था, यहां तक कि जब केस चला तो उसको सजाए मौत हो गई, फांसी की सजा हो गई उसको। जब फांसी का दिन करीब आया तो उसको पूछा गया कि बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, उसने कहा मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। अब जाहिर है वो मौका ऐसा होता है कि वैसे ही मुलाकात कराई जाती है, मां को बुलाया गया, मां से मुलाकात के लिए जब उसको करीब किया गया तो देखा कि अचानक वो मां पर झपटा और अपने नाखूनों से अपने दांतों से उसका कान चबा डाला, चेहरा छील दिया, बड़ा अजीबोगरीब उसके साथ सलूक करने लगा। लोगों ने बड़ी मुश्किलों से उसको छुड़ाया और कहा कि बदबخت दुनिया से जा रहा है, दुनिया से जा रहा है, अभी कुछ देर बाद तुझे फांसी हो जाएगी और जाते जाते तू अपनी मां को इतनी तकलीफ देता है। उसने कहा यही मेरी मां है जिसने आज मुझे यहां पहुंचाया है। मैं एक मरतबा अपने स्कूल से अपने साथी की पेंसिल चुरा कर लाया था, आकर अपनी मां को बताया, अगर मेरी मां उस वक्त मुझे कुछ डांट डपट कर लेती, कुछ मुझ पर सख्ती कर लेती तो मैं आदि नहीं बनता, मेरी चोरी करने की आदत बढ़ती गई, यहां तक कि जब बड़ा हुआ तो डाके डालने शुरू किए, उसी डाका जनी में किसी का कत्ल हो गया और आज इसी कत्ल के सबब में फांसी चढ़ा रहा हूं। बेस क्या है? मां, कि अगर मां मुझे उस वक्त रोक लेती तो मैं बच जाता। तो मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, वालिदैन की ये जिम्मेदारी है कि वो जहां अपने बच्चों की बेहतरीन जिस्मानी परवरिश का ख्याल रखते वहां इनकी दीनी व अखलाकी तालीम व तरबियत के सिलसिले में अपना किरदार अदा करें। अल्लाह की रहमत है, दावत इस्लामी हमारे साथ है, दावत इस्लामी हमारे साथ है, और मैं दुनिया भर के आशिकान रसूल से मुखातिब हूं, मदनी चैनल में दुनिया भर में देखा जा रहा है। ये अमीर अहले सुन्नत का हम पर एहसान है, खुदा की कसम हम पर एहसान है कि वालिदैन को जो औलाद की तरबियत करनी चाहिए थी उसकी जिम्मेदारी भी अमीर अहले सुन्नत ने खुद ले ली, दे दी हमको मदरसतुल मदीना, दे दी हमको दारुल मदीना, दे दी हमको जामियतुल मदीना। अच्छा आप कहेंगे जनाब हमारे इलाके में नहीं है, चले भाई ऑनलाइन पढ़ा लें, ऑनलाइन पढ़ा लें, अपनी बच्चियों को पढ़ा लें, अपनी बच्चों की मां को पढ़ा लें, अपनी मां को पढ़ा लें, अपनी बहनों को पढ़ा लें, करें ना। अगर हमसे गफलत हुई तो आज मौका मुयस्सर है, लेकिन ये जिम्मेदारी ये हमारी बहुत अहम है और इस तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। अपनी औलाद को तरबियत दे, सिखाए, अच्छी अच्छी आदतें सिखाए, बुरे कामों से मना करें। जब वो कोई अच्छा काम करे उनकी हौसला अफजाई करें, इस काम में मजीद इनकी रगबत हो, कोई दीनी काम करें वो, मिसाल पारा याद कर लें, कायदा खत्म कर लें, नाजरा कुरान पाक पढ़ लें, हिफ्ज में कोई सूरत आपको सुना दें, इस मामले में की जाने वाली हौसला अफजाई उनको जरूर आगे बढ़ा सकती है। और कोई बुरा काम सरजद हो जाए तो हौसला शिकनी कीजिए, मगर शरीयत के दायरे में रहकर, इस अंदाज से नहीं कि वो जलील हो जाए या दिलेर हो जाए। बाज़ औक़ात होता है कि किसी की एक गलती जिसको छुपाने से हो सकता था कि वो बच जाता आइंदा के लिए, उसका इतना ढोल बजा दिया जाता है कि कहता है जब सब जगह जलील हो ही गए तो अब क्या बचना। तो ये चीजें मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपनी तबीयत में चेंज करनी चाहिए। तो याद रखिए, इस्लामी तरबियत याफ्ता औलाद ही ये वालिदैन की नेक नामी का सबब बनती है। जाहिर है आपका बेटा अगर आपकी नमाज जनाजा पढ़ाएगा, कितना एजाज है उसके लिए कि अपने बाप की नमाज जनाजा बेटा पढ़ा रहा है, और अगर बेटे को जनाजा ही ना आता हो तो कितना फर्क है। ये वालिदैन की नेक नामी का सबब बनती है इस्लामी तरबियत याफ्ता औलाद, और इनके बुढ़ापे का सहारा और मरने के बाद सदका जारिया के तौर पर काम आती है। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही कि जब बच्चे पढ़ लिख लेते हैं दुनियावी तालीम, डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, तो उनके वालिदैन उनसे गुफ्तगू करते हुए डरते हैं। जिनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर कोई भी बड़ी पोस्ट पर चले जाते हैं, उनके वालिदैन उनसे डरते हैं कि कहीं हमारे बेटों को बुरा ना लग जाए, स्टैंडर्ड बढ़ जाता है ना, दुनियावी ओहदा मिल जाता है। तो वालिदैन अपनी औलाद से गुफ्तगू करते हुए डरते हैं कि कहीं हमारी औलाद को बुरा ना लग जाए, और जब यही औलाद आलिम दीन बनती है तो वो अपने माँ बाप से बात करते हुए डरती है कि कहीं हमारे माँ बाप को बुरा ना लग जाए। कितना चेंज है, चेंज है कि एक इस्लामी तरबियत याफ्ता औलाद ये कभी भी कान पकड़कर अपने बाप को ओल्ड हाउस में नहीं भेजती है, ये कभी भी अपनी माँ को जो है वो ओल्ड हाउस में जमा नहीं कराते। वो इस बात को एजाज समझते हैं कि अगर इस बुढ़ापे में हमने अपने माँ बाप की खिदमत की, इनकी दुआएं ली, तो बेड़ा पार हो जाएगा। एक नौजवान से मेरी मुलाकात हुई, बड़ा मैं तो रश किया उसके ऊपर। उसने अपनी जो भी इसकी तालीमी मामला, कारोबारी नौकरियों के मामला थे वो सब वो कर रहा था। माँ बीमार हो गई, वो सारे काम का छोड़ के माँ की खिदमत में लग गया। अगरचे उसका वो गिराव तो नीचे आया, लेकिन यकीन माने उसकी ये पूरी हिस्ट्री सुनकर मुझे उसमें प्यार आया कि इसने अपनी जिंदगी का वो सौदा किया जो इसको जिंदगी भर इसका नफा देगा, क्योंकि इसने अपनी माँ की उस वक्त में जब माँ को जरूरत थी उसने खिदमत की, उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, माँ का अस्पताल लाना ले जाना, अपने एक्सपेंस कम कर दिए, अपना घर अच्छा घर चेंज कर दिया, सादा सा घर ले लिया। क्यों? कि मेरे आमदनी लिमिटेड है, मेरे अखराजात माँ के इलाज के लिए बढ़ गए, मैं अपनी आसाइशें कम कर लूं ताकि अपनी माँ की खिदमत कर सकूं। तो बहरहाल मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखिए कि अगर गफलत और सुस्ती के बाइस औलाद की तरबियत का मामला ये लाउबालीपन यानी बेपरवाही की नजर हो गया तो आने वाला वक्त इंतहाई परेशान कुन और तकलीफ दे साबित हो सकता है। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीन आमनू कू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تفسیر صراط الجنان شریف میں اس آیت سے معلوم ہوا کہ جہاں مسلمان پر اپنی اصلاح کرنی ضروری ہے، وہیں اہل خانہ کی اسلامی تعلیم و تربیت کرنا بھی اس پر لازم ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے بیوی بچوں اور گھر میں جو افراد اس کے ماتحت ہیں ان سب کو इस्लामी अहकामात की तालीम दे या दिलवाए, यूं ही इस्लामी तालीमात के साए में उनकी तरबियत करे ताकि ये भी जहन्नम की आग से महफूज रहें। सूरत तहरीम की ये आयत करीमा जो मैंने अभी तिलावत की, जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम अली रिदवान के सामने तिलावत फरमाई तो सहाबाए किराम अली रिदवान ने अर्ज की कि अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने अहलो याल यानी अपनी बीवी बच्चों को किस तरह जहन्नम की आग से बचा सकते हैं। तो अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम उन्हें उन चीजों का हुक्म दो जो अल्लाह पाक को पसंद है और उनसे मना करो जो रब ताला को नापसंद है। और मौला अली मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तजा शेर खुदा करम अल्लाह तआला वजहुल करीम इस आयत मुबारका के तहत फरमाते हैं, इनको तालीम दो और अदब सिखाओ। तालीम कौन सी? दीन की तालीम। दीन की तालीम हमारे बच्चों को याद तो होता है कि इल्म हासिल करो चाहे जीन जाना पड़े, इल्म हासिल करो मां की गोद से लेकर कब्र तक। कौन सा इल्म? दीन का इल्म। कलमे याद हो, नमाज याद हो, नमाज के अस्कार याद हो, नमाज का तरीका याद हो। बालिग हो जाए तो जो गुसल के जरूरी अकामात फर्ज उलूम सीख रहे उसको सीखने या सिखाने में इनकी मुआवनत की जाए। तो याद रखिए कि दुनिया में हर बच्चा ये फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, यानी अल्लाह पाक ने इंसानों को तौहीद और दीन इस्लाम कबूल करने की सलाहियत के साथ पैदा किया है। और फितरी तौर पर इंसान ना तो इस दीन से मुंह मोड़ सकता है ना ही इनकार कर सकता है, क्योंकि ये दीन हर एतबार से अकले सलीम से हम आहंग और सही समझ के ऐन मुताबिक है। और जो गुमराह होगा वो जिन्नों और इंसानों के गुमराह करने से गुमराह होगा। हमारे प्यारे नबी अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है मगर उसके वालिदैन उसे यहूदी नसरानी या मजूसी बना देते हैं। इमाम मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल्लाहि वाली फरमाते हैं कि बच्चा एक ऐसा जौहर है जो खैर व शर ये दोनों कबूल करता है। अब ये उसके वालिदैन पर मुनहसिर है कि वो बच्चे को खैर व शर में किस जाने माइल करते हैं। लिहाजा मुसलमान होने के नाते मां बाप का ये फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों को खैर की तालीम दें, अखलाक की तालीम दें, भलाई की तालीम दें। और इसमें चंद उमूर का ख्याल करें। एक बहुत ज्यादा अहम बात तो ये कि अपना माहौल अच्छा होना चाहिए। बाप सिगरेट हाथ में लेकर बच्चे को सिगरेट पीने पर मार रहा हो, अब बताएं क्या असर होगा? हैं? बाप अगर बच्चा फोन उठाए और कोई इसके वालिद साहब के दोस्त फोन करें, चाहे उसी का अपना मोबाइल, अब उसने बच्चे ने उठा लिया तो उसका दोस्त पूछे बेटा अब्बू से बात कराए, अब अब्बू उसको कह रहे हैं कह दो अब्बू नहीं है, अब्बू नहीं है बेटा मोबाइल, कह दो अब्बू भूल गए। अब ये सब बातें जो हम आप सिखा रहे हैं ये क्या है? दरवाजे पर अगर कोई आया बुलाने के लिए और हमें उससे नहीं मिलना है, अब्बू सो रहे हैं, अब्बू की तबीयत खराब है, अब्बू घर पे नहीं है, इन सब बातों को क्या सिखाते हैं? एक ट्रेन में कुछ चंद लोग सफर कर रहे थे तो एक शख्स को देखा जो बड़ी इत्तेमाम के साथ एक दीनी किताब का मुताला कर रहा था। उसके साथ उसका बच्चा भी बेटा किताब पढ़ रहा था। देखने वाला बड़ा हैरान हो गया, कहने लगा यार हम तो अपने बच्चों से मोबाइल फोन ही नहीं छुड़ा सके, हम अपने बच्चों से मोबाइल फोन छुड़ा ही नहीं सके, तुमने अपने बच्चे की आदत कैसे बनाई कि ये किताब पढ़ रहा है? ये तो बड़ा हैरान कुन मामला हो गया कि बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं है, हम तो अपने बच्चों से मोबाइल नहीं छुड़ा सके, तुमने इसको किताब में कैसे लगा दिया? तो शख्स ने कहा कि भाई बच्चे हमारी बात कहां मानते हैं, बच्चे हमारी बात कहां मानते हैं, ये तो वो करते हैं जो हम करते हैं। यानी गोया मैं किताब पढ़ रहा हूं ना तो ये पढ़ रहा है, अगर मेरे हाथ में भी मोबाइल होता ना तो इसके हाथ में भी मोबाइल होना था, अल्लाह समझ दे हमें भी कि हम क्या करें। बातें बहुत अच्छी लगती हैं ये, मगर काश कि हम अमल करने वाले बन जाएं। और वाकई ये बात तो है कि इन चीजों से बच्चे तो अगरचे नाबालिग भी होते हैं, वो शायद अपना इतना नुकसान ना करते हों, लेकिन हम तो बड़े हैं ना, हम अपने बहुत सारा वक्त इस तरह के मामलात में जाया कर बैठते हैं। अल्लाह हमारी गफलतों को मुआफ फरमाए, और जो हमारी बकिया जिंदगी बकिया लम्हात हैं, अल्लाह ताला उसको नेकियों में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अगर शुरू से इन बातों का ख्याल रखा जाएगा तो उम्मीद है कि बच्चों की तरबियत का मामला ये बेहतर हो सकता है। सबसे अहम बात जो मुशाहदे की बात है कि जब कोई बच्चा जिद कर रहा हो या सो ना रहा हो तो वालिदैन मुख्तलिफ तरीके से उसे मौसीकी म्यूजिक मोबाइल ट्यून्स या मुख्तलिफ जानवरों की सी आवाज निकाल कर उसे नॉर्मल हालत में लाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जब बच्चा इब्तदान कुछ बोलना शुरू करते हैं तो उसको क्या सिखाते हैं, मामा पापा टाटा पप्पू गुड्डू। ये हमारा माशरे का कल्चर है कि सबसे पहले उसके मुंह से अगर मामा निकला तो हम खुश होते हैं कि वाह भाई मां को पुकारा इसने, इसने अब्बा बोला है मुझे भाई, सबसे पहले ये बात है। तो बार बार एक चीज की तकरार जब होती है तो बच्चे की जबान से उमूमन वही निकलता है, और बड़े होने के बाद भी बच्चे की वही आदत रहती है जो उसने मां बाप से सिखाया या उन्हें करते देखा। तो लिहाजा मां बाप और सरपरस्त साहिबान को चाहिए कि बच्चे को इधर उधर की बातें करने या फजूल उल्टा सीधा कलाम सिखाने के बजाय अल्लाह अल्लाह कहना सिखाएं, ताकि इसकी साफ सुथरी और पाकीजा जबान पर प्यारे रब अज़्ज़ा वजल का नाम जारी हो जाए। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकतें बच्चे और सिखाने वाले को नसीब होंगी, और अल्लाह पाक की रहमत से उम्मीद है कि बच्चे का दिल बड़े होने के बाद भी अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं होगा। यानी अमीर अहले सुन्नत का इस मामले में प्रैक्टिकल जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा, ये माशाअल्लाह हमारे इब्ने अली हसन रजा जो छोटे मदनी मुन्ने जो मदनी चैनल पर आपको अमीर अहले सुन्नत की मौजूदगी में नजर आते हैं बारहा, तो ये चूंकि यूं समझे कि पैदा होने के बाद से ही ये अमीर अहले सुन्नत के कदमों में रहा, अल्हम्दुलिल्लाह इस मदनी मुन्ने को देखा है कि इसकी जबान पर जिक्रुल्लाह जारी रहा अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू से ही कोई चीज देनी लेनी अमीर अहले सुन्नत बारहा इसके सामने अल्लाह का जिक्र करते ही देखा, और ये माशाल्लाह सिखाया। आज भी अगर कोई बच्चे आते हैं तो अमीर अहले सुन्नत ईदी तकसीम करते हैं, कोई चीज इन्हें देते हैं तो बच्चों को तरगीब दिलाते हैं, कहो बेटा अल्लाह, तो बच्चा अल्लाह कहता है उसको ईदी मिलती है। तो ये एक बड़ा अच्छा खुशगवार माहौल बन जाता है। तो इसी तरह अगर खाना खाने का टाइम होता है, छोटे छोटे बच्चों को अमीर अहले सुन्नत के दस्तरखान पर जब मुस्तकिल देखा गया तो देखा गया कि माशाअल्लाह ये छोटी सी उम्र में ही सुन्नत के मुताबिक बैठने और अव्वल आखिर दुआएं पढ़ने, इसी तरह दौराने ताम खाना खाने के दौरान जो जिक्रुल्लाह करने के जो अंदाज हैं, अमीर अहले सुन्नत ने बारहा मदनी चैनल पे भी बयान किए, या वाजिदू की सदाएं बुलंद करना, अपने आप अपना खाना सलीके से खाना, ना गिराना, गिर जाए तो उठाकर खा लेना, अपने बर्तन को साफ कर लेना, यहां तक कि दावत इस्लामी के मदनी माहौल में छोटे छोटे मदनी मुन्नों को मुन्नियों को बर्तन धोकर पीते हुए भी देखा है। तो पता ही चलता है कि जो इनको सिखाया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह वो उनकी आदत बनती जाती है, और यही आदत बड़े होकर भी कायम रहेगी। इसी तरह बच्चे जब भी बात समझने के काबिल हो जाएं, उनके दिल में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करने की कोशिश की जाए, क्योंकि मोहब्बत रसूल ये दीन इस्लाम की पैरवी पर उभारती है। बच्चों में इश्क़ रसूल पैदा करने के लिए इन्हें प्यारे नबी के औसाफ बयान किए जाएं। खाना खा रहे, अब खाना खाने के लिए दस्तरखान पर बैठकर अगर खाना खा रहे हैं तो बताया जाए इनको कि दस्तरखान पर सुन्नत के मुताबिक इस तरह बैठकर खाना खाना यह हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है। खाना तो खिलाना ही है ना, अगर अंदाज बैठकर सिखाएंगे तो ये भी है। फिर इसी तरह जब खाना निकाला जाता है तो अपने हाथों से निकाल कर दिया जाए कि ये ईसार भी इसमें शामिल हो सकता है कि हमें कोई आलू बोटी पसंद है और वही आलू बोटी पसंदीदा बोटी जो है वो अपने बच्चों की प्लेट में डाली और ये इनको सिखाया कि इस तरह ये इशार करना ये बाई से सवाब और हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है। तो ये बचपन ही से उसको इन बातों को पता चलेगा। अगर सर में तेल तो डाल ही रहे लेकिन बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर सर में जब बच्चों के सर में तेल डाला, इस तेल डालते वक्त अगर ये सिखाया जाए कि बेटा ये सर में जो तेल लगाते हैं ना ये हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है। बाल बनाए जाते हैं तो बाल बनाते बनाते भी अगर सिखाया जाए कि बालों का इकराम करना, इनको सवार के रखना, ये भी हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है। लिबास पहनाते ही है लेकिन लिबास पहनाते हुए उसे भी अच्छी अच्छी नीयतों के साथ अगर लिबास पहनाया जाए, इसी तरह सोते वक्त भी, यानी हर तरह के मामलात में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत के बेहतरीन पहलू हमारे पास किताबों में मौजूद है। अगर इनको इस सैनरियो में सिखाया जाए कि ये काम तो कर ही रहे लेकिन ये काम दरअसल हमारे आका ने भी किया था, अगर इस अंदाज से हम भी किसी से मुस्कुराकर बात करना चाहिए बेटा, इससे लोगों के दिलों में बड़ी मोहब्बत पैदा होती है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात करते करते मुस्कुराया करते थे। ये बात समझाई जा सकती है। इस तरह से अगर शुरू से ही अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाएगा, इनकी सुन्नत और आदाब इस अंदाज से बयान की जाएंगी तो इनके दिल में मोहब्बत पैदा होगी और इसकी बरकतें हासिल होंगी, क्योंकि मोहब्बत रसूल ये दीन इस्लाम की पैरवी पर उभारती है। कुरान पाक की तिलावत का मामला है तो ये तिलावत करना, कुरान पाक के नाजिल होने के मामला, इसको चूमना, इसको अदब करना, ये सब बातें वो होती हैं जो अगर बचपन से ही बच्चा अपने वालिदैन को, अपने बड़ों को करता देखता है तो उमूमन देखा जाता है कि इसको वो अपनी जिंदगी में नाफिज करता है। इसी तरह अपने घरों में सिर्फ और सिर्फ मदनी चैनल चलाइए और बिलखसूस वो सिलसिले जो मदनी मुन्नों की तरबियत के हवाले से हों, रोशन मुस्तकबिल, मदनी मुन्नों का सुन्नत भरा इज्तिमा, इसी तरह गुलाम रसूल के मदनी फूल और तो सोशल मीडिया के भी कुछ मदनी गुलदस्ते ये अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल पर वक्तन फवक्तन दिखाए जाते हैं, तो अपने बच्चों को अगर इन बातों को दिखाकर इनसे जो नसीहत के मदनी फूल हैं उसके हवाले से इनकी तरबियत वक्तन फवक्तन की जाती रहेगी तो ये इंशाल्लाह हमारे लिए मुस्तकबिल का एक बेहतरीन सरमाया बन जाएंगे। वरना हम हालात देख रहे हैं कि घरों में बदजबानियां, घरों में गंदा माहौल, इसी तरह लड़ाई झगड़े, इसी तरह बेहयाई के मामलात, ये सब अंदाज अगर हमारे बच्चे शुरू से ही अपने घरों में, महल्लों में, इलाकों में देखते हैं, नतीजन यही होता है कि बड़े होकर ये भी बुरी राय इख्तियार कर रहे हैं। बहरहाल मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, बड़ी प्यारी बात कि सैयदना अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह ताला ले फरमाते हैं कि शेख नूरुद्दीन शौनी रहमतुल्लाह ताला ले ने बताया कि मैं बचपन में शौनी नामी शहर में जानवर चराया करता था। मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने से इस कदर मोहब्बत थी कि मैं अपना खाना बच्चों को देकर उनसे कहता ये खा लो, फिर मैं और तुम सब मिलकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। चुनांचे हम दिन का अक्सर हिस्सा अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हुए गुजार देते हैं। बचपन से कैसा अच्छा माहौल हो कि अगर हमारे बच्चे जो है वो उमूमन जो गुड्डों से गुड्डियों से जो खेलते हैं उसी के साथ, मतलब जो इस तरह का जो माहौल होता है इसके जो साइड इफेक्ट्स है ये हमारे सामने, और अगर हमने ही अपने बच्चों को कुछ इस अंदाज की बातें सिखाई। बारहा ऐसा देखा भी है कि बच्चे अगर जमा होते हैं कहीं तो उनको इज्तिमाई जिक्र नाद करते हुए देखा कि कोई मदनी मुन्ना आके तिलावत कर रहा है, कोई मदनी मुन्ना आकर हम्द पढ़ रहा है, किसी ने नाशरी पढ़ी, किसी ने सुन्नतों वाला बयान किया, किसी ने सलातो सलाम किया, तो पता चला कि जिनके घरों में जैसा माहौल होगा वो वैसे ही इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। तो ए आशिकान रसूल, जब बच्चे समझने वाली उम्र को पहुंचे तो उन्हें दीन के जरूरी अकायद और नजरियात से आगाह किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे शुरू में मैंने अर्ज किया कि इस मामले में दावत इस्लामी हमारे साथ है, دنیا کے کسی کونے میں بھی آپ ہیں، آپ اپنے بچوں کو دین کا علم سکھانا چاہتے، مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے گھر بیٹھے اپنے بچوں کو، بچیوں کو، بچوں کی ماں کو آپ دین کی تعلیم سے آراستہ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawataislami.net اس کا وزٹ کریں، اور جو ہمارے وطن میں رہتے ہیں تو 3040 مدرسۃ المدینہ قائم ہو چکے ہیں، 606 جامعۃ المدینہ قائم ہو چکے ہیں، اور بھی سفر جاری ہے، لیکن ظاہر ہے اس کو کرنے کے لیے بہت بڑا اسٹاف چاہیے. تو میں ایسے ینگسٹر سے کہوں گا جو دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، آخر انہیں کہیں نہ کہیں دنیاوی جاب ہی کرنی ہے نا، تو دین کے راستے میں آئے، دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے مدرس کورس کریں جس کے ذریعے آپ قرآن پڑھانا سیکھیں گے، جن کے ذریعے آپ دین کا تعلیم دلانا سیکھیں گے، اور یہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے آپ آگے بڑھیں، اس کام کو لیں آگے بڑھ کر، تو انشاءاللہ دین کو اور ترقی اور عروج حاصل ہوگا. اسی طرح بڑوں کا ادب سکھائیے، کہ بچوں کو بڑوں کا ادب سکھانا، ادب کرنا بھی سکھانا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ جو بندہ بڑوں کا ادب کرتا ہے وہ معاشرے میں عزت و وقار کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور یہاں پر اگر لڑائی ہو جائے دو بھائیوں میں بھی تو وہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی جو حالت کرتا ہے وہ ہمارے سامنے، اور ہم بسا اوقات جو ہے وہ تماشا دیکھتے رہتے ہیں. اسی طرح بچے کو سچ بولنا سکھائیے، کہ اگر مثال ہم تو اپنے اساتذہ کرام کے ایسے ورک شاپ جب ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے تحت جو ہمارے ٹیچرز پڑھاتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں، ہم ان کے ناظمین کو کہتے ہیں کہ اگر بچہ آ کر یہ کہے کہ قاری صاحب آج میری آنکھ دیر سے کھلی تھی، تو آپ انہیں یوں اس بات پر سزا نہ دیں کہ اگر وہ اس کی وجہ یہ کہے کہ ہماری گاڑی پنچر ہو گئی تھی وہ جھوٹ بول دے، تو اس کے دل میں کہیں یہ بات نہ بیٹھ جائے کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ میری آنکھ دیر سے کھلی تو قاری صاحب سزا دیں گے، اور میں یہ کہوں گا جھوٹ بول کر کہ گاڑی پنچر ہو گئی تھی تو قاری صاحب مجھے چھوڑ دیں گے. تو ایسے معاملات میں ہم کو احتیاط کرنی ہے. تو اسی طرح والدین کو بھی چاہیے کہ بچے اگر کسی بات کو غلط کر دیں تو وہ ایسے موقع پر بھی جھوٹ کا سہارا نہ لیں، اور سچ بولنے پر جو ہے وہ ان کو انعام دیا جائے، ان کی اپریشیٹ کیا جائے. ہاں جو کام غلط کیا اس کی ایک بات الگ ہے سمجھانا، لیکن اس معاملے میں احتیاط. ایک جگہ پڑھا تھا، ایک شخص نے اپنے بچے کو سائیکل دلا کر دی. اب سائیکل جب دلائی تو ارے والد صاحب تو سارا دن کام کاج پہ ہوتے ہیں. تو ایک دن اس بچے کی ماں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ نے اس بچے کو سائیکل تو دلا دی ہے، مگر مسئلہ یہ کہ یہ آپ کے جانے کے بعد تو یہ اسکول سے جیسے ہی آتا ہے وہ سائیکل نکال کے یہ چلا جاتا ہے تو سارا دن ہی گھومتا رہتا ہے، آپ کے آنے تک تو سائیکل ہی گھماتا رہتا ہے، میری مانتا نہیں ہے، آپ اس کو کچھ کرو، اس کو ڈانٹو اس کو. اب وہ شخص جو تھا وہ اس کو غصہ آیا، اس نے بچے کو بلایا، کہا کہ یہ کیا لگا رکھا ہے، سارا دن سائیکل چلاتے ہو، لاؤ ادھر سائیکل. یہ لے کر وہ زنجیر اور تالا لیا اور سائیکل کو تالا لگایا، خبردار آئندہ سے سائیکل بند تمہاری. خیر سائیکل کو تالا لگا دیا گیا. یہ دوسرے دن جب کام پہ نکلا تو بچہ بچہ ہی ہوتا ہے، اپنے باپ کا پلاس اور پیچکس نکالا اور وہ کڑی جو تھی اس کو کھولا، زنجیر نکالی، سائیکل اٹھائی، گھمایا پھرایا، جیسے ہی ابا کا آنے کا ٹائم ہوا سائیکل اس کی جگہ پر رکھی، دوبارہ زنجیر لگائی اور کلپ جو ہے وہی پلاس سے بند کر دیا. والد صاحب آ کر اپنے کھانے پینے کے معاملات سے جب فارغ ہوئے تو اب اپنے بچوں کی امی سے پوچھنے لگے، اب تو ابھی گھر پہ ہی رہا ہوگا؟ کہاں گھر پہ رہا، وہ تو آپ کے جانے کے بعد آپ کا جو پلاس پیچکس لے کر اس نے تو کڑیاں کھول لی اور لے کر گیا، یہ تو گھومتا رہا اور آج آ کر اس نے لگا دیا، رکھ دیا اس نے، کوئی سائیکل وائیکل چھپا کے نہیں رکھی، تو گھومتا رہا تھا سارا دن. اچھا اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا کہ بھائی تم نے میرے پلاس سے یہ تم نے کڑیاں کھول لی؟ ہاں بھائی واہ، تم تو بڑے ہو کے بہت بڑے انجینئر بنو گے، یوں کر کے اس کو شاباشی دی نا. وہ بچہ بڑا حیران کہ ابا کو کیا ہو گیا، بجائے پٹائی کرنے کے ڈانٹنے کے اس نے یوں کیا. اور بچے نے بڑا حوصلے سے وہ بات سنی اور خوش ہو کر چلا گیا. وہ تو दो तीन घंटे के बाद फिर वालिद ने बुलाया उसको और कहा कि बेटा आपने काम टेक्निकली तौर पे तो अच्छा किया लेकिन ये चोरी नहीं हुई, आपने इसी तरह बगैर इजाजत साइकिल ले ली और ये कर लिया वो कर लिया। अब उसको दूसरे अंदाज से समझाया और वो जो साइकिल चलाने के जो साइड इफेक्ट्स है वो समझाए, तो इस तरह बच्चे की समझ में आई और वो आवारा गर्दी का जो मामला था वो दूर हो गया। तो बात है समझाने की कि आखिर हम किस तरह समझाएं, और कई ऐसे मामला होते हैं कि जिसमें अगर ये नहीं सिखाते तो फिर बच्चा जो है वो बहुत ही ज्यादा मतलब कमजोर हो जाता है। और जिसका एक पहलू मैंने आपको शुरू में भी अर्ज किया कि हमारी बातों पर जो है वो बात बात पर उसको डराना खौफजदा करना ये भी उसकी कॉन्फिडेंस को इफेक्ट करता है। इसको बच्चे अगर मदरसे में पढ़ते हैं अब किसी को बुला लिया कि भाई सुनाओ अपने चचा को तुम क्या पढ़ते हो, अब बच्चे ने मिसालें सुना दिया कुछ पढ़ने में गलती हो गई सबके सामने डांट दिया और आइंदा जब चचा आ रहे हो तो पहले से उसको डराते हैं आज सही पढ़ना हो तेरी की तरह बेइज्जती नहीं कराना। अब वो बच्चा क्या क्या ख्याल है पढ़ेगा वो तो डरा दिया ना उसको। अब आप बताएं कि जो पूरा कुरान सुनाते हैं हाफिज साहब उनका कुरान सुनाने में कई मिस्टेक्स हो जाती हैं, होता है ना। तो ये ऐसे मामला नहीं है कि जो नहीं हो सकते, होते, लेकिन अपने बच्चों को इस तरह डराना ये आइंदा कहां खड़ा होगा। इसी तरह फ्रिज में से कोई चीज लेकर आओ ए ए गिराना नहीं गिराना नहीं, अब वो गिराना नहीं क्या उधाड़ करके गिराएगा ही, अगर वो गिरा भी दे बेटा आपको लगी तो नहीं। इस तरह से कुछ ऐसा अंदाज इख्तियार किया जाए कि ऐसा ना हो आइंदा आपके दिए हुए बर्तन को लेते हुए उसके हाथ कांप रहे हो गए अब्बू ने दिए तो गिरेगा ही गिरेगा मुझसे उठेगा ही उठेगा, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाद होकर दिल चीज दिल में बैठ जाती है। किसी जगह पढ़ा था एक शख्स बड़ा बुजदिल था बहुत डरता था हर काम से, वो किसी उस्ताद के पास पहुंचा और उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं बहादुर बनूं, अब मुझे बताएंगे मैं बहादुर कैसे बन सकता हूं। तो कहा मैं तुम्हें सिखा तो दूंगा लेकिन काम करना पड़ेगा। बताएं कहा ये आज तुम सारा दिन जो है ना बस तुम गलियों में जाओ और जो तुम्हें मिले ना तुम उससे हाथ मिलाओ और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहो कि मैं बहुत बुजदिल आदमी हूं, मैं बहुत बुजदिल आदमी हूं। अब उस शख्स को तारीफ सुनी थी कि ये शख्स सिखाता है, अब उसने कहा सीखने के लिए चलो भाई ये कर लेते हैं। शुरू शुरू में तो हिचकिचाया वो, यार मैं कैसे बात करूंगा मैं कैसे बोलूंगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल से जो ना खौफ उतर गया और वो मिलने लगा सबसे, भाई मैं बहुत बुजदिल आदमी हूं मैं बहुत डरपोक आदमी हूं। अब शाम तक जो उसने 50-100 अफराद से मिलकर जो ये कहा ना तो शाम को ही उसकी कैफियत जाहिर हो गई कि अब मुझे बुजदिल नहीं हूं, अब मैं डरपोक नहीं हूं बल्कि मैं बहादुर आदमी हूं। इसी तरह अपने बच्चों के अंदर भी खामा खा का डर पैदा ना कीजिए। हां डराना है तो अल्लाह से डराएं, अल्लाह से डराएं, खौफ खुदा पैदा करें कि बेटा हम जो काम करते हैं अल्लाह देख रहा है हम क्या कर रहे हैं, चाहे हम पर्दों के छुपकर करें चाहे बंद कमरों में करें अल्लाह हर वक्त हमें देख रहा है। इस तरह के मामलात पर तरबियत करके इंशाअल्लाह हम माशरे को एक अच्छा फर्द एक अच्छा मुसलमान ये देंगे। और जब हमारे बच्चे शरीयत और सुन्नत के मुताबिक अमल करने वाले होंगे तो कहते हैं ना कि फर्द से माशरा बनता है, हमारे बच्चे अच्छे होंगे तो हमारा घर अच्छा होगा, हमारा घर अच्छा होगा हमारा मोहल्ला अच्छा होगा, हमारा मोहल्ला अच्छा होगा हमारा शहर अच्छा होगा, हमारा शहर अच्छा होगा हमारा मुल्क अच्छा होगा, दुनिया भर में इसकी बरकतें हासिल होंगी। इसीलिए आप सबको दावत है कि खुद भी दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहें, अपने बच्चों को भी दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रखें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी जिल अमीन।